एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान एक।
और मैं हूं आपका मेजबान दो। आज हम एक ऐसे नाम पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही मतलब दिमाग में कुछ तस्वीरें सी आ जाती हैं।
हाँ ना,
बिल्कुल।
सेब का पेड़, वो गिरता हुआ सेब और एक बहुत ही गंभीर सा चेहरा।
सर आइज़ैक न्यूटन। स्कूल में तो लगता था कि बस गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम, बस इतना ही है न्यूटन।
हाँ, मुझे भी यही लगता था। लेकिन आज हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं, रॉब इलिफ की किताब न्यूटन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, वो बताती है कि ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है,
शायद सबसे कम दिलचस्प हिस्सा।
हाँ,
असल कहानी तो उन लाखों शब्दों में छुपी है जो उन्होंने विज्ञान पर नहीं बल्कि कीमिया यानी एल्केमी और बाइबल की भविष्यवाणियों पर लिखे थे।
अच्छा,
और इलिफ की किताब यही दिखाती है कि अगर न्यूटन के इन दो पक्षों को अलग करके देखा जाए तो असली न्यूटन को समझा ही नहीं जा सकता।
ये बात आज के समय में बहुत दिलचस्प है, जहां हम विज्ञान और धर्म को अक्सर दो बिल्कुल अलग, मतलब विरोधी खेमों में देखते हैं।
बिल्कुल। तो चलिए इस धारणा को थोड़ा चुनौती देते हैं, लेकिन पहले लेखक के बारे में बात कर लेते हैं। ये रॉब इलिफ है कौन?
हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हमें उनकी बात क्यों सुननी चाहिए?
देखिए, रॉब इलिफ कोई आम जीवनीकार नहीं है। वो ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में विज्ञान के इतिहास के प्रोफेसर तो हैं ही, लेकिन उनकी सबसे खास बात ये है कि वो द न्यूटन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है।
द न्यूटन प्रोजेक्ट, ये क्या है?
ये एक बहुत बड़ा मतलब एक डिजिटल मिशन है। इसका मकसद है न्यूटन के लिखे हर एक शब्द को स्कैन करके ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
हर एक शब्द?
हर एक शब्द। और इसमें सिर्फ उनका विज्ञान वाला काम नहीं है, इसमें वो लाखों शब्द भी शामिल हैं जो उन्होंने धर्मशास्त्र, प्राचीन इतिहास और कीमिया पर लिखे थे।
अरे वाह।
ये वो दस्तावेज हैं जिन्हें लगभग 300 सालों तक नजरअंदाज किया गया। क्यों? क्योंकि वे हमारे बनाए हुए वैज्ञानिक न्यूटन की छवि में फिट नहीं बैठते थे।
इसका मतलब इलिफ ने उन दस्तावेजों को पढ़ा है जिन्हें न्यूटन ने शायद कभी किसी को दिखाने का इरादा ही नहीं रखा था।
बिल्कुल। उन्होंने न्यूटन के निजी विचारों, उनके डर, उनके गुप्त विश्वासों को सीधे उनके हाथ से लिखे नोट से समझा है।
तो वो हमें एक ज्यादा असली न्यूटन दिखा सकते हैं।
हाँ, जो मिथकों से परे है, जो सिर्फ एक महान वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक बेहद जटिल, जुनूनी और कभी कभी डरा देने वाला इंसान भी था।
तो फिर इस किताब का मुख्य तर्क क्या है? ये न्यूटन की कहानी को किसने नजरिए से देखती है?
किताब का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी तर्क ये है कि न्यूटन का जो विज्ञान है वो उनके धार्मिक और वो जो रहस्यमयी विश्वास थे उनसे अलग था ही नहीं।
अच्छा, मतलब जुड़ा हुआ था।
बिल्कुल, बल्कि उसी का एक हिस्सा था। हम सोचते हैं कि न्यूटन दिन में विज्ञान करते थे और रात में छिपकर कीमिया। इलिफ कहते हैं नहीं, ये सब एक ही खोज थी।
एक ही खोज? इसका मतलब क्या हुआ?
न्यूटन का मानना था कि ईश्वर ने हमें समझने के लिए दो किताबें दी हैं।
दो किताबें?
हाँ, पहली है प्रकृति यानी नेचर, जिसमें ब्रह्मांड के नियम लिखे हैं।
राइट।
और दूसरी किताब है धर्म ग्रंथ यानी स्क्रिप्चर, जिसमें मानवता के लिए ईश्वर की योजना लिखी है।
तो उनके लिए भौतिकी के नियम खोजना और बाइबल की भविष्यवाणियों का अर्थ निकालना,
दोनों ही ईश्वर के मन को पढ़ने की कोशिश थी।
ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो ये किताब हमें एक ऐसे न्यूटन की यात्रा पे ले जाती है जो शायद पहले आधुनिक वैज्ञानिक नहीं
बल्कि आखिरी महान जादूगर थे।
वाह, जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक पुल की तरह खड़े थे।
आपने बिल्कुल सही समझा। वो ब्रह्मांड के भौतिक नियमों को ईश्वर की दिव्य योजना के साथ जोड़ना चाहते थे।
तो ये समझने के लिए कि कोई इंसान इतना जटिल कैसे हो सकता है, शायद हमें उनके शुरुआत से शुरू करना होगा। उनके बचपन के बारे में क्या पता चलता है?
किताब बताती है कि उनका बचपन आसान नहीं था। उनके जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई थी और जब वो 3 साल के थे तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली
और उन्हें छोड़ दिया।
हाँ, उन्हें उनकी नानी के पास छोड़ दिया। इस अकेलेपन ने उन्हें बहुत एकांत प्रिय और जुनूनी इंसान बनाया। वो मुश्किल से दोस्त बनाते थे।
और शायद इसी एकांत ने उन्हें उनके सबसे प्रसिद्ध दौर के लिए तैयार किया, जिसे एनस मिराबिलिस या चमत्कारों का साल कहते हैं।
हाँ, 1665-66 में जब प्लेग की वजह से कैम्ब्रिज बंद हो गया तो न्यूटन अपने घर लौट आए।
वुल स्टॉप?
हाँ, और उस 18 महीने के अकेलेपन में, सिर्फ 24 साल की उम्र में, उन्होंने उन विचारों पर काम करना शुरू किया जो दुनिया को बदल देंगे।
जैसे कि कैलकुलस?
सबसे पहले तो कैलकुलस। उन्होंने गति और परिवर्तन को समझने के लिए गणित की एक पूरी नई भाषा ही बना दी,
जिससे उन्होंने फ्लक्सियंस कहा। ये अपने आप में एक जीवन भर की उपलब्धि होती, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही तो नहीं किया।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने प्रकाश के बारे में सदियों पुरानी धारणा को भी चुनौती दी
कि सफेद रोशनी शुद्ध होती है।
हाँ, यही माना जाता था कि प्रिज्म उसमें रंग डालता है। न्यूटन ने अपने कमरे में एक छोटा सा छेद किया, रोशनी को प्रिज्म से गुजारा और साबित कर दिया कि सफेद रोशनी असल में सभी रंगों का मिश्रण है।
प्रिज्म तो बस उन्हें अलग अलग करता है।
बिल्कुल। और इन सबके बीच उन्हें वो पहला आइडिया आया जो बाद में गुरुत्वाकर्षण का नियम बना।
तो वो सेब वाली कहानी, क्या वो सच है?
कहानी शायद सच्ची न हो, लेकिन उसका जो आइडिया है वो जरूर सच है। न्यूटन ने सोचा कि जो शक्ति सेब को नीचे खींचती है, क्या वही शक्ति चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर उसकी कक्षा में बनाए रखती है?
ये क्रांतिकारी सवाल था। मतलब एक ही नियम जो पृथ्वी पर भी लागू हो और स्वर्ग में भी?
अविश्वसनीय है ना, उस एक साल में इतना कुछ सोचना।
78 में प्रकाशित प्रिंसिपिया, शायद विज्ञान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण किताब।
इसी में उन्होंने गति के तीन नियम और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, है ना?
हाँ, और प्रिंसिपिया का असली जीनियस ये था कि इसने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को एक कर दिया। एक ही नियम से गिरते हुए सेब और ग्रहों की कक्षाओं दोनों को समझाया जा सकता था।
और यहीं पर उन्होंने वो प्रसिद्ध बात कही, हाइपोथेसिस नॉन फिंगो,
मैं परिकल्पना नहीं बनाता।
इसका क्या मतलब था?
इसका मतलब था कि वो अटकलें नहीं लगाएंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्यों है, वो बस ये दिखाएंगे कि यह गणितीय रूप से कैसे काम करता है।
तो उन्होंने विज्ञान को दर्शन से अलग कर दिया।
बिल्कुल, उसे गणित की ठोस नींव पर खड़ा किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था।
प्रिंसिपिया के बाद उनकी एक और महत्वपूर्ण किताब थी ऑप्टिक्स। वो इससे कैसे अलग थी?
ऑप्टिक्स ज्यादा प्रयोगात्मक थी, पढ़ने में आसान थी, लेकिन उसका सबसे रहस्यमय हिस्सा था अंत में दिए गए क्वेरीज या सवाल।
ऐसे सवाल जिनके जवाब उनके पास भी नहीं थे।
हाँ, जैसे गर्मी की प्रकृति क्या है, क्या प्रकाश और पदार्थ एक दूसरे में बदल सकते हैं, और यहीं पर हमें न्यूटन का वो कीमियागर वाला पक्ष दिखाई देता है।
कैसे?
ये सवाल एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हैं जो सिर्फ एक बेजान मशीन नहीं है, बल्कि जिसमें सक्रिय दैवीय शक्तियां काम कर रही हैं। ये उनके गुप्त विश्वासों की एक झलक थी।
ये सब तो उनका अकादमिक काम है, लेकिन किताब उनके सार्वजनिक जीवन के बारे में क्या बताती है? मैंने सुना है कि उन्होंने विज्ञान से ज्यादा समय किसी और चीज पर लगाया था।
हाँ, और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 1696 में वो लंदन चले गए और रॉयल मिंट यानी टकसाल के वार्डन बने।
अच्छा।
उस समय इंग्लैंड की मुद्रा बड़े संकट में थी, बहुत सारे नकली सिक्के चलन में थे।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने एक क्रूर और बेहद कुशल प्रशासक की भूमिका निभाई। उन्होंने देश के सभी सिक्कों को वापस लेकर उन्हें फिर से जारी करने की निगरानी की।
ठीक है।
लेकिन इससे भी ज्यादा, उन्होंने जासूसों का एक नेटवर्क बनाया और व्यक्तिगत रूप से जालसाजों का पीछा किया, उन पर मुकदमे चलाए और कईयों को फांसी पर चढ़वा दिया।
एक मिनट, क्या हम उसी न्यूटन की बात कर रहे हैं जिसने प्रिंसिपिया लिखी थी? ये तो किसी जासूस या पुलिस वाले जैसा लग रहा है।
हाँ, यही तो इस किताब की खूबी है। ये हमें दिखाती है कि न्यूटन कोई एक आयामी जीनियस नहीं थे, बल्कि एक बेहद सख्त और सत्तावादी इंसान भी हो सकते थे।
और ये तो कुछ भी नहीं, उनका सबसे गुप्त पक्ष तो उनका धर्म और कीमिया का काम था।
हाँ, उन्होंने इन विषयों पर विज्ञान से कहीं ज्यादा लिखा।
तो उनके धार्मिक विचार क्या थे जो इतने गुप्त थे?
धर्मशास्त्र में वो गुप्त रूप से एक अरियन थे।
अरियन?
इसका मतलब है कि वो पवित्र ट्रिनिटी के सिद्धांत को नहीं मानते थे। वो मानते थे कि ये चौथी शताब्दी में चर्च द्वारा फैलाया गया एक भ्रष्टाचार है और ईसा मसीह को ईश्वर के रूप में पूजना मूर्ति पूजा है।
अरे,
अगर ये बात उस समय बाहर आ जाती
तो उनका पूरा करियर तबाह हो जाता,
उन्हें कैम्ब्रिज से निकाल दिया जाता।
और कीमिया, क्या वो शीशे से सोना बनाने की कोशिश कर रहे थे?
नहीं, उनका लक्ष्य सोना बनाना नहीं था। उनके लिए कीमिया एक आध्यात्मिक खोज थी। वो उस वनस्पति आत्मा या उन सक्रिय सिद्धांतों को समझना चाहते थे जिनका उपयोग ईश्वर ने इस दुनिया को बनाने के लिए किया था।
वाह, तो प्रयोगशाला में प्रयोग करना और बाइबल पढ़ना दोनों एक ही पहेली के टुकड़े थे।
बिल्कुल, ईश्वर की योजना को समझना।
ये तो न्यूटन की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, वो मुख्य संदेश क्या होंगे?
मुझे लगता है सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है न्यूटन के विचारों की एकता। हमारे लिए विज्ञान, धर्म, कीमिया, ये सब अलग अलग डिब्बे हैं।
हाँ।
उनके लिए ये सब एक ही पेड़ की शाखाएं थीं, जिसकी जड़ ईश्वर में थी।
और दूसरा शायद मिथक बनाम असली इंसान का है, वो कोई तर्क की ठंडी मूर्ति नहीं थे।
बिल्कुल नहीं, वो एक बहुत ही जटिल, जुनूनी और कभी कभी अपने दुश्मनों के प्रति बहुत निर्दयी इंसान थे। रॉबर्ट हुक और लाइबनिज़ के साथ कैलकुलस को लेकर उनके विवाद बहुत कड़वे थे।
अच्छा।
तीसरा मुख्य विचार है प्राचीन ज्ञान की खोज। ये बहुत दिलचस्प है। न्यूटन को नहीं लगता था कि वो कुछ नया बना रहे हैं।
तो क्या लगता था उन्हें?
उन्हें लगता था कि वो बस उस शुद्ध ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं जो प्राचीन काल में मानवता को पता था और समय के साथ खो गया या भ्रष्ट हो गया,
चाहे वो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो या धर्म का असली रूप।
हाँ, उन्हें लगता था कि वो बस खोई हुई सच्चाई को वापस ला रहे हैं।
और चौथा, जो शायद सबसे चौंकाने वाला है, वो है ईश्वर की सक्रिय भूमिका। अक्सर न्यूटन के ब्रह्मांड को एक घड़ी की तरह देखा जाता है ना?
हाँ, कि भगवान ने बस एक बार बनाकर चाबी भर दी और छोड़ दिया। लेकिन इलिफ दिखाते हैं कि ये गलत है। न्यूटन का ईश्वर लगातार ब्रह्मांड को चला रहा था। गुरुत्वाकर्षण कोई अपने आप काम करने वाला बल नहीं था, बल्कि ईश्वर की इच्छा का एक साधन था।
किताब में जरूर कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार होंगे जो न्यूटन के इस जटिल व्यक्तित्व को दर्शाते हैं।
हाँ बिल्कुल। पहला तो उनका प्रसिद्ध कथन है, यदि मैंने औरों से दूर तक देखा है तो इसलिए कि मैं दानवों के कंधों पर खड़ा था।
ये सुनने में तो बहुत विनम्र लगता है।
हाँ, लगता तो है, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि इसमें एक बहुत ही सूक्ष्म ताना भी था।
ताना?
ये पत्र उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी रॉबर्ट हुक को लिखा था, जो कद में छोटे और कुछ झुके हुए थे।
तो एक ही वाक्य में महान सत्य भी है और व्यक्तिगत कटाक्ष भी।
बिल्कुल, ये न्यूटन के जटिल व्यक्तित्व को दिखाता है।
कमाल है। और कोई
दूसरा जिसका हमने जिक्र किया, मैं परिकल्पना नहीं बनाता। ये उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सार है। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें साबित किया जा सके।
और अंत में उनके जीवन के अंतिम दिनों का एक विचार जो उनकी शख्सियत को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है।
हाँ, उन्होंने कहा था, मैं खुद को समुद्र के किनारे खेलने वाले एक लड़के जैसा पाता हूँ जो कभी कभी एक ज्यादा चिकना पत्थर ढूंढ लेता है, जबकि सच्चाई का विशाल महासागर मेरे सामने अनखोजा पड़ा है।
मतलब जिस इंसान ने ब्रह्मांड के नियम खोज लिए, वो भी मानता था कि उसने तो बस सत्ता को छुआ है।
यही उनकी असाधारण बौद्धिक विनम्रता थी।
तो न्यूटन के इस जटिल और जुनूनी जीवन से हम आज की दुनिया में क्या सीख सकते हैं?
मुझे लगता है पहली और सबसे बड़ी सीख है अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने की शक्ति। न्यूटन ने भौतिकी, गणित, धर्मशास्त्र के बीच कोई दीवार नहीं देखी।
और आज की दुनिया में सबसे बड़े इनोवेशंस भी अक्सर वही होते हैं जहां अलग अलग क्षेत्र मिलते हैं।
बिल्कुल। दूसरी सीख शायद फोकस के बारे में है। उनका जो फोकस था वो एक जुनून से आता था, एक आध्यात्मिक खोज से। किसी समीकरण को हल करना ईश्वर के दिमाग को पढ़ने जैसा था।
मतलब प्रेरणा किसी बड़े मकसद से जुड़ी होनी चाहिए।
हाँ।
और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण, बुनियादी धारणाओं पर सवाल उठाना।
जैसे सफेद रोशनी शुद्ध होती है या स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अलग अलग हैं।
हाँ, सच्ची प्रगति के लिए हमें उन चीजों पर सवाल उठाने की हिम्मत करनी चाहिए जिन्हें हर कोई सच मानता है।
तो इस पूरी चर्चा से हमारे लिए अंतिम सीख क्या है? मेरे लिए सबसे मूल्यवान बात यह है कि यह किताब न्यूटन को एक संगमरमर की मूर्ति से उतार कर एक जीते जागते गलतियां करने वाले इंसान के रूप में हमारे सामने रखती है।
बिल्कुल, हम यह समझ पाते हैं कि वह शायद पहले आधुनिक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि प्राचीन और आधुनिक दुनिया के बीच खड़े आखिरी महान प्राकृतिक दार्शनिक थे।
उनका पूरा जीवन इस विश्वास का एक प्रमाण था कि ब्रह्मांड में हर खोज, चाहे वो एक ग्रह की गति हो या बाइबल का एक छिपा हुआ श्लोक, ईश्वर के मन को समझने का एक प्रयास था। ये हमें प्रतिभा की जटिलता के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।